ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का हमारा विषय बहुत ही सुंदर है और इस अलौकिक पढ़ाई में इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। जीवन लौकिक हो या अलौकिक हो, आपसी एकता के बिना चल नहीं सकता, ये हम सभी जानते हैं। एकता का मतलब है आपसी विश्वास, आपस में निस्वार्थ स्नेह, सम्मान, एक दो की आपस में समीपता, और जब जरूरत पड़े तो किसी महान उद्देश्य के लिए संगठित रूप में अपना संपूर्ण पुरुषार्थ लगा देने की योग्यता, इसका नाम है एकता। इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं जिनसे हमें पता पड़ता है कि एकता के अभाव में कितना नुकसान होता है। आज से लगभग 826 साल पहले अर्थात 1191 और 1192 इनमें तरावड़ी के दो युद्ध हुए। इस युद्ध में एक तरफ था भारत का अंतिम हिंदू राजा जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, और उसका राज्य दिल्ली से लेके अजमेर तक और भी भारत के कई भागों तक फैला हुआ था। इस युद्ध में दूसरी तरफ था मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान बहुत वीर था, लेकिन जयचंद के साथ उसकी फूट के कारण वो कमजोर पड़ा, और उस फूट का कारण भी था जयचंद की जो बेटी संयोगिता थी उसके प्रति उसका लगाव कहिए, अनुराग कहिए। तो जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे काम विकार मनुष्य को नीचे गिराता है, अपराधी बनाता है और आपसी एकता को नष्ट कर डालता है। तो वही हुआ। इस युद्ध में राजा पृथ्वीराज की हार हुई, जयचंद का भी वध कर दिया गया, पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया, और यह भारत देश अगले 600 साल के लिए मुस्लिम बादशाहों के अधीन हो गया। और उन लोगों ने इस देश को सांस्कृतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी बहुत लूटा, लेकिन जब उनमें आपस में फूट पड़ी तो उस फूट का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, और अंग्रेजों की तो नीति ही थी फूट डालो और राज करो। अगर आप इतिहास की कुछ घटनाओं को स्मरण करें तो अंग्रेज लोग कैसे फूट डालते थे। भारत गरीब तो बन ही गया था, कृषि नष्ट हो गई थी, उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे, व्यक्ति रोटी के एक एक टुकड़े के लिए मोहताज हो गए थे। तो एक घटना दिखाते हैं कि एक अंग्रेज ने एक ऊंची लकड़ी के दोनों तरफ ऊंची लकड़ी पे एक रोटी बांध रखी है और दो भूखे हिंदुस्तानी सामने खड़े हैं, तो वो लकड़ी को हिलाता है तो रोटी कभी उसकी तरफ जाती है, वो पकड़ने लगता है तो वो ऊपर कर लेता है उस लकड़ी को, फिर दूसरे की तरफ झुका देता है, वो पकड़ने लगता है तो फिर वो लकड़ी को ऊपर कर लेता है, तो वो रोटी झूलती रहती है और दोनों में से किसी के भी हाथ में नहीं आती, और फिर वो दोनों झुंझला करके एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं दोनों हिंदुस्तानी। तो एक एक रोटी के लिए हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाया और ये देश पूरी तरह बिखर गया। फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में थोड़ी बहुत एकता के बल से ये देश आजाद तो हो गया, लेकिन आज हम देखते हैं चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक, चाहे पारिवारिक, एकता का पंछी तो पूरी तरह गायब है। और उसके बिना कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी वर्ग के नाम पे, कभी लिंग के नाम पे दंगे होते रहते हैं, और उस दंगों की आग में लोग झुलसते रहते हैं। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को मुरलियों में बताया है कि बच्चे एकता को तोड़ने वाली जो सबसे बड़ी एकता की दुश्मन है वो है व्यक्ति का मैंपन। तो बाबा ने कहा इस मैंपन को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक कभी भी आपसी एकता नहीं होगी। बाबा ने कहा कि आप बच्चों का यहाँ कोई व्यक्तिगत धंधा नहीं है जो आपको मैंपन आई, मैं ज्यादा अमीर बनूं कि मैं ज्यादा कमाई करूं, नहीं। बाबा ने कहा जो भी कुछ है सब कुछ बाबा का है, मेरी सेवा है, मैं ही करूं, मेरा ही हक है, मेरे सिवाय कोई हाथ नहीं लगाएगा। बाबा ने कहा सेवा भी बाबा की, करवाने वाला भी बाबा। तो बाबा ने कहा एक मंत्र पक्का करो एकता के लिए, पहले आप। और बाबा ने कहा जो पहले आप करता है वो अपने आप आगे हो जाता है। कहते हैं एक गुरु के दो चेले थे, तो दोनों में झगड़ा हो गया, उसने कहा मैं आगे, उसने कहा मैं आगे, तो झगड़ा काफी बढ़ गया। एक ने कहा मैं तेरे से पहले आया था आश्रम पे इसलिए मैं आगे हूं, दूसरे ने कहा मेरे को तेरे से ज्यादा श्लोक आते हैं, मेरी साधना तेरे से ज्यादा है इसलिए मैं आगे हूं। जब झगड़ा बढ़ता बढ़ता बहुत बढ़ गया तो दोनों गुरुजी के पास गए, गुरुजी हमारा फैसला करो हमारे में से आगे कौन है, बड़ा कौन है, पहले महिमा किसकी होनी चाहिए। तो गुरुजी ने एक सेकंड में फैसला कर दिया कि जो दूसरे को आगे समझता है वही आगे। तो बाबा ने भी कहा पहले आप करना माना अपने आप पहले हो जाना, और जो कहता है पहले मैं वो अपने आप पीछे हो जाता है, और जो कहता है पहले आप वो अपने आप आगे हो जाता है। तो आगे होने का तरीका वास्तव में दूसरों को आगे करना है, जितना अधिक दूसरों को आगे करता है आगे हो जाता है। दादी प्रकाशमणि से भी पूछा कि आप सबसे आगे कैसे निकल गए, आपके साथ वाले बहुत भाई बहने थे लेकिन आप सबसे आगे कैसे चले गए। तो दादी ने कहा मैंने बाबा के इसी महामंत्र को यूज किया कि जो दूसरों को आगे करता है वो खुद आगे हो जाता है। रोज के जीवन में एकता की कितनी महिमा है हम अपने चारों ओर देखते हैं, रोज के जीवन में देखते हैं। सबसे पहले आप इस शरीर को ही देख लीजिए, ये भी पांच तत्वों की एकता से बना है, पांच चीजों का मिश्रण है इसमें, और उस मिश्रण में आपस में विरोधी चीजें, आग और पानी की कभी मित्रता नहीं होती, लेकिन इसमें आग भी है इसमें पानी भी है। तो उस तत्वों की यूनिटी से ये शरीर कितना अमूल्य बन गए, कितना मूल्य है शरीर का। छोटे छोटे जीवों को देखिए, एक दीमक होता है छोटा सा जीव, आपने देखा होगा, सफेद रंग का मिट्टी जैसा रंग बना लेता है अपना, उसका रंग मिट्टी जैसा होता है। और कितना भी बड़ा भारी लकड़ी का पेड़ हो, अगर दीमक उसमें घुस जाए बाहर से तो आपको लगेगा कि ये तना साबुत है, पर अंदर से एकदम खोखला हो जाएगा, दीमक मिट्टी बना देगी। कितनी ताकत है, एक नहीं होती है, वो लाखों के अंदाज में होते हैं, छोटे छोटे चींटी जैसे। और चींटियों को देख लीजिए, अपने से 100 गुने बड़े मरे हुए जानवर को भी घसीट ले जाती है। और काम करती हैं, सारा दिन काम करती हैं। और अगर रास्ते में एक चींटी दूसरी के सामने आ जाए तो मिलेंगी जरूर, मिलने के बाद फिर आगे जाएंगे। आप कभी ध्यान से देखना चलती हुई चींटियों को, किसने सिखाया उनको कि पहले आपस में ओम शांति करो और फिर आगे बढ़ो। शेर बहुत ताकतवर होता है, लेकिन अगर गायों का बहुत बड़ा झुंड हो और उस पे शेर आक्रमण करे तो सारी गोएं सींग मार मार करके शेर को भी भगा देती हैं। तो देखिए, एकता के बल से कमजोर भी शक्तिशाली बन जाता है, और दूसरी तरफ कहती हैं कि दुनिया से दो चीजें गायब होती जा रही हैं। एक तो शेर, चिड़ियाघरों में शेर बचे ही नहीं, जंगलों में शेर बचे ही नहीं। लोग अफ्रीका के जंगलों में शेर देखने जाते हैं, सुबह से दोपहर हो जाती है घूमते घूमते, हिरण दिखेंगे, बारहसिंगे दिखेंगे, जिराफ दिखेगा, शेर नहीं दिखेगा। और दूसरा, हंस गायब हो गए, नदियों तालाबों जोड़ों के किनारे आपको बगुले मिलेंगे पर हंस नहीं मिलेंगे। तो इनके गायब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण ये है, एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि सिंगन के लहड़ा नहीं हंसाना चले पराती, और लालन की नहीं बोरियां साधु ने बसे जमाती। अर्थात शेरों के झुंड नहीं होते, तो जो झुंड में नहीं रहेगा वो जिएगा भी नहीं, और हंस कभी पंक्ति बना के नहीं उड़ते। कव्वे उड़ते हैं, कबूतर उड़ते हैं, चिड़िया उड़ती हैं, आसमान में देखे ना कभी हंस देखे, मानसरोवर के किनारे एक हंस दो हंस। तो जब उनके झुंड नहीं रहे तो वो अपने आप को बचा भी नहीं पाए, और जो जानवर झुंडों में रहते थे वो सबके सब आपको देखने में मिलेंगे। और मनुष्य तो है ही सामाजिक प्राणी, गांव बचा के रहता है, शहर बचा के रहता है, अकेला रह ही नहीं सकता। और मनुष्य की जो जीवन की प्रक्रिया है उसमें कितनी यूनिटी है, हाथ कमाते हैं लेकिन कमाने वाले हाथ कुछ भी नहीं खाते, सोना पकड़े के नोट पकड़े सब फिसल जाता है। कितना भी बढ़िया पदार्थ उस धन से हम खरीदें, खाता तो मुंह है, हाथ कमाते हैं मुंह में डाल देते हैं। और मुंह भी देखिए चबाता है, सिर्फ चबाता है, और चबा करके पास ऑन कर देता है। मान लीजिए चबाते चबाते अन्न का कोई कण किसी दांत में छिप गया, उसको भी नहीं रख सकता। अगर वो छिपा रहेगा तो दांत खराब, बीमारी, बदबू, फिर सारा शरीर खराब। इसलिए ईमानदारी से एक एक कण पास ऑन करें, या तो अंदर जाए या बाहर फेंके, पर अपने पास नहीं रख सकता। और फिर वो चीज अंदर गई पेट में, तो पेट ने भी केवल उसको पीसा। जठर बोलते हैं, जठर अग्नि बोलते हैं, वहां उसकी पिसाई होती है। और पीसने के बाद उसने भी आगे पास ऑन कर दिया। शरीर के सारे अंगों में उस भोजन की शक्ति का प्रवाह हो गया और उसमें से थोड़ी बहुत ताकत हाथों में भी आई, बस हाथ उससे संतुष्ट, जितना मिला। सारा नहीं चाहिए, जितना उसका हिस्सा है उतना ले लिया और काम में लगे रहते। ये नहीं हम कमाते हैं, हम पकड़ते हैं तो सारा हम ही ले लें। और इसलिए शरीर की व्यवस्था ठीक से चलती है। अगर बीच में किसी एक को भी बेईमानी आ जाए, पेट कहे सारा मेरा, मुंह कहे सारा मेरा, तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए जन्म से लेके मृत्यु तक ये शरीर काम करता रहता है। और बीमारी तभी होती है जब इसमें से कोई एक अंग अकड़ जाता है, यूनिटी में से बाहर निकल जाता है। और देखिए एक तिनके की क्या कीमत है, छोटा सा तिनका, आंधी आए तो उड़ा ले जाए, लेकिन उन्हीं छोटे छोटे तिनकों से बना हुआ एक मोटा रस्सा हाथी को भी बांध लेता है। एक बूंद का क्या अस्तित्व है, जमीन पे गिरी और सूख गई, उड़ गई, लेकिन बूंद बूंद मिलकर के सागर बनता है। और सागर की शक्ति कितनी है, एक छोटा सा मिट्टी का कण, छोटा सा मिट्टी का कण, उन कणों से मिलकर के ईंट बनती है और ईंटों से बड़े बड़े दुर्ग बनते, किले बनते। और वो किला कितना मजबूत होता है, उसमें हजारों लोगों को शरण मिलती है। किले को लांघना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बना किससे है, मिट्टी के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, आप ब्राह्मणों की आपसी एकता से ब्राह्मणों का किला मजबूत बनता। ब्राह्मणों के किले की एक एक ईंट आप बच्चे हो। अगर ईंट कमजोर हो, भुरभुरी हो, कच्ची हो, तो किला भी कमजोर हो जाता है। इसलिए अपने को एक नहीं समझो, एक एक ईंट किले का निर्माण कर रही है। ईंट की कमजोरी पूरे किले की कमजोरी है। इसलिए मैं एक नहीं हूं, लेकिन मेरे बल में पूरे किले का बल समाया हुआ है। मैं कमजोर हूं तो किला कमजोर, तो मेरे बल की, मेरे योगदान की इतनी कीमत, इसलिए मैं मजबूत भी रहूं और जुड़ा भी रहूं। फिर बाबा ने कहा जैसे ईंट ईंट से जुड़ी रहती है, तो बीच में वो लोग तो सीमेंट लगाते, पर बाबा ने कहा जो निस्वार्थ स्नेह है वो सीमेंट है। अगर स्नेह में स्वार्थ आ गया, मुझे नाम मिले, पद मिले, मैं आगे जाऊं, मेरी महिमा हो, लोग मुझे ही देखें, मुझे ही पूछें, मिलने वाले मेरा ही नाम लें, इसका नाम क्यों लिया, इसको आगे क्यों किया, लोग इसको प्यार क्यों करते हैं, इसकी महिमा क्यों करते हैं, सब कुछ मैं ही करूं, तो ये स्वार्थ आ गया। और ईंटों का जुड़ाव खत्म हो जाएगा और किले में दरार आ जाएगी। लेकिन जितना इस किले में मेरा महत्व है उतना ही बाजू वाली ईंट का भी महत्व है, जितना सबसे नीचे वाली ईंट का महत्व है उतना ही टॉप वाली ईंट का भी महत्व है। हर एक ईंट चाहे कहीं भी लगी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे मेरी साथ वाली ईंट से जुड़ के रहना है। जब ये भाव पक्का हो तो बाबा ने कहा ये ब्राह्मणों का किला इतना मजबूत हो जाएगा कोई भी माया कोई भी तूफान इसको हिला नहीं सकेगा। आपने अंगीठी में जलते कोयले देखे होंगे, जब तक सारे कोयले अंगीठी में इकट्ठे हैं सारे एकदम लाल लाल रहते हैं। आप एक कोयला निकाल लो अंगीठी में से और नीचे फर्श पे डाल दो, अब उस कोयले का क्या होगा? ऊर्जा खत्म, लाली खत्म, रोशनी खत्म, गर्मी खत्म, और दो पांच मिनट के बाद ही काला काला हो जाएगा, उसके ऊपर राख की परत आ जाएगी। अंगीठी वाले सारे धधक रहे हैं और वो बेचारा अकेला। तो हमें ताकत कब है? जब हम अंगीठी के बीच में अर्थात सबके साथ। अगर मैं सोचूं नहीं नहीं मेरे में तो बहुत ताकत है, मैं अकेला भी बहुत कुछ कर सकता हूं, अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। वो सारी रोशनी और सारी गर्मी सारी ऊर्जा सबके साथ थी। हम देखते हैं यहाँ डायमंड हॉल में बैठते हैं तो कितना अच्छा योग लगता है, और घर में जब अकेले अकेले लगाते हैं तब कभी कोई बात याद आएगी, कभी कोई बात याद आएगी, कभी कोई आवाज सुनाई देगी, कभी कोई काम याद आएगा, कभी कोई मिलने आ जाएगा, शरीर भी स्थिर नहीं होता है, कभी कहीं लगेगा दर्द हो रहा है, कभी लगेगा खुजली हो रही है, कभी भूख लगेगी, कभी प्यास लगेगी। और जब यहाँ संगठन में बैठते हैं तो कुछ भी याद नहीं आता है, बस एक बाबा। तो वो जो संगठन का बल है वो योग में काम करता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे संगठन में योग में जरूर बैठो, संगठन में एक का बल दूसरे को, जैसे वो कोयले क्या कर रही है, एक की शक्ति दूसरे को मिल रही है, दूसरे की तीसरे को मिल रही है, तो सारे धधक रहे हैं। तो जब हम संगठन में योग में बैठते हैं तो एक को बैठा देख के उसके अच्छे वाइब्रेशन दूसरे को आते, तीसरे को आते, चौथे को आते। एक बहुत सुंदर कहानी है बटेरों की, बटेरों का नाम तो सुना है ना, कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर, एक मुहावरा। तीतर जैसी एक छोटी चिड़िया होती है उसको बटेर बोलते। तो एक बार एक जंगल में बहुत सारे बटेर थे, तो एक दिन वहां शिकारी आया और शिकारी ने जाल फैलाया, तो उस जाल में बहुत सारे बटेर फंस गए और शिकारी लेके चला गया, उनको बाजार में बेचा और शिकारी को बहुत पैसा मिला। तो जो बाकी बचे हुए बटेर थे उनको बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने आपस में चर्चा करनी शुरू कर दी कि भी सारे इकट्ठे हो जाओ और देखो सावधान रहो, हमारे बहुत सारे साथी तो बेच दिए गए, मार दिए गए, पर हम शिकारी की पकड़ में नहीं आएंगे। इसके लिए आप ऐसा करना कि शिकारी अगर जाल फैला भी ले और आप उसमें फंस भी जाओ, तो जो जाल की गांठ होती है उसके ऊपर सिर रख करके एक साथ सारे जोर लगाना और जाल समेत उड़ जाना और फिर जाल को किसी झाड़ी के ऊपर डाल देना। तो जब आप जाल को झाड़ी में डालेंगे तो झाड़ी के कांटों में जाल उलझ जाएगा, आप लोग तो उड़ जाएंगे और शिकारी उस जाल को निकालते निकालते इतना परेशान होगा कि दोबारा जाल डालेगा ही नहीं। तो शिकारी आया, उसने जाल डाला, कुछ बटेर उसमें फंसे और फिर उसको लेके उड़े और फिर झाड़ी पे डाला, जाल फंस गया, पंछी उड़ गए। तो शिकारी ने सोचा कि इनमें आपस में एकता है, इसलिए इस बार ये जीत गए। लेकिन मुझे पता इनकी एकता हमेशा नहीं रहेगी, कभी ना कभी इनमें आपस में फूट पड़ेगी और जब फूट पड़ेगी तब ये सारे जरूर फंसेंगे। तो शिकारी इंतजार करता रहा और बटेर जंगल में स्वतंत्रता से घूमते रहे। कई दिन हो गए, भूल गए शिकारी भी आया था। तो एक दिन जब वो दाना चुग रहे थे तो एक बटेर दूसरे के गर्दन के ऊपर से निकल गया, ऐसे फुदक गए। तो जिसकी गर्दन के ऊपर से निकला उसने बोला, क्यों भाई, तेरे को दिखाई नहीं देता, तू मेरी गर्दन को लंग करके क्यों गया। उसने माफी मांगी, बोला गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन जिसकी गर्दन के ऊपर से उलांग के गया था उसने माना ही नहीं, बोला तेरे को घमंड है, तू पता नहीं अपने को क्या समझता है, तेरे को दिखता नहीं। फिर सारे बटेर दो ग्रुप में बट गए, आधे उसकी तरफ हो गए आधे उसकी तरफ हो गए। और जब दो ग्रुप में बट गए तो दाने भी अलग अलग जगह जाके खाने लगे, हम तुम्हारे साथ नहीं दाने चुगेंगे, थोड़ा दूर जाके। अब शिकारी ने देखा कि इतने दिनों से तो ये इकट्ठे थे और अब ये दो ग्रुप में बट के अलग अलग जगह दाने खा रही हैं, तो जरूर इनमें आपस में कुछ हुआ। उसको मौका मिला, जाल डाला और उस फूट का फायदा उठाया, पंछी जाल में फंस गए, तू मैं करके वैसे ही कमजोर हो गए थे। और इस बार शिकारी जीत गया और पंछी हार गए। तो देखिए, जब एकता थी तो पंछियों ने मानव को हराया और जब एकता टूटी तो मानव ने पंछियों को हराया। जीतेगा वही जिसके पास एकता होगी। लेकिन एकता को मेंटेन करने के लिए करें क्या? एकता तो बहुत अच्छा गुण है, परिवार में एकता, सेंटर के भाई बहनों में एकता, समाज में एकता, देश में एकता, जहां एकता होती है उस एकता के बल से हम असंभव कामों को संभव कर लेते हैं। लेकिन एकता के लिए करें क्या? तो एकता के लिए जो सबसे पहला गुण है, नंबर एक नम्रता और नंबर दो गुण दर्शन। संस्कृत में एक कहावत है, बालाद अपि सुभाषितम्, छोटे बच्चे से भी उपदेश ग्रहण कर लेना चाहिए। ये मत सोचो कि मैं बड़ा हूं और ये तो छोटा सा है, ये मुझे क्या सिखाएगा। बालाद अपि सुभाषितम्, बेशक आयु में छोटा है, पढ़ाई में छोटा है, ज्ञान में छोटा है, लेकिन अगर वो अच्छी बात बता रहा है तो हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए, अर्थात हमारे में नम्रता होनी चाहिए। कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बालाद अपि सुभाषितम, बेशक छोटा है, पद में छोटा है, रिश्ते में छोटा है, उससे भी अच्छी बात ग्रहण कर लो। और दूसरा, दूसरा संस्कृत का एक बहुत सुंदर शब्द है, अयध्याति अपि कांचनम। सोना अगर कूड़े के ढेर पर भी पड़ा तो भी उठा लेना चाहिए। अर्थात गुण कहीं भी दिखे, किसी में भी दिखे, किसी समय भी दिखे, उसको ले लेना चाहिए। गुण दर्शन, दुनिया में कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जिसमें औषधि ना हो, और कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो। तो जो लोग औषधि निर्माण करते हैं, आयुर्वेद वाले फूल पत्ते पेड़ इनसे औषधि बनाते हैं, तो वो पूरा पेड़ नहीं देखते, उसकी छाल में औषधि है कि उसकी पत्ते में औषधि है कि फूल में है, बस उतना ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं आप भी किसी में भी कोई भी गुण है, उस गुण को ग्रहण करो और गुणवान बनो। कई मीठा बहुत बोलते हैं, कई प्यार बहुत देते हैं, सबके साथ संगठन में मिलके चलते हैं, हरेक में स्वभाव जन्य अलग अलग गुण हैं, कर्म के हिसाब से अलग अलग गुण हैं। मुझे याद है यहाँ एक बार एक VIP आया था, बाद में उसने अपना अनुभव सुनाया कि मैंने आबू में सबके चेहरे पे मुस्कान देखी, स्वीपर टू स्पीकर, चाहे वो स्वीपर था चाहे वो स्पीकर था। तो स्वीपर अगर ना हो तो काम कैसे चले, और स्पीकर ना हो तो भी काम कैसे चले। दोनों के अपने अपने गुण हैं, और दोनों के गुणों से ही उस कार्य में संपूर्णता आती है। कहते हैं एक बार एक राजा था, तो वो बहुत बहादुर था और उसने बहुत सारे राज्य जीत लिए। अब बहुत सारे राज्य जीत लिए और बहुत सारे राजा उसके अधीन हो गए, पर अब उसको ये डर लगने लगा कि अगर ये सारे मेरे अकॉर्डिंग नहीं चले, मेरे साथ यूनिटी में नहीं चले, और अगर ये सारे एक हो गए तो फिर मेरा भी राज्य उखाड़ देंगे, तो मैं क्या युक्ति अपनाऊं जो ये मेरे अधीनस्थ राजा हैं ये मेरे साथ एक होकर के चले। तो इसके लिए वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक गुरुजी के पास गया, एक साधु के पास गया, और अपनी पूरी बात सुनाई कि मुझे कोई ऐसी तकनीक बताइए मैं इन सबको एक बना करके अपने साथ ले चलो। सुबह का समय था, सूर्य की धूप आ रही थी, महाराज महात्मा जी धूप में बैठे थे और यज्ञ के लिए लकड़ी तोड़ रहे थे, लंबी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे। तो राजा को कहा कि एक साइड हो जा, मेरी धूप को रोक मत, और अपनी लकड़ी तोड़ता रहा तोड़ता रहा। राजा इंतजार करता रहा मेरे प्रश्न का उत्तर दे, प्रश्न का उत्तर दे, थोड़ा साइड में खड़ा हो गया राजा। महात्मा जी लकड़ी तोड़ते गए तोड़ते गए, काफी सारी लकड़ी बिखर गई। फिर महात्मा जी ने एक एक लकड़ी को ऐसे हाथ में लेकर के उसका गठा सा बनाया, हाथ में वो गठा बन गया, और गठा बनने के बाद एक पतली, बिल्कुल पतली लोहे की तार पड़ी थी, वो उस गठे के चारों ओर ऐसे लपेट दी। राजा ने सोचा महात्मा जी का काम पूरा हो गया, अब मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो बहुत नम्रता से कहा, महाराज बताइए ना, मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दिया ही नहीं, बताइए ना मैं क्या करूं। तो महात्मा जी ने कहा, मैंने बता तो दिया। राजा ने कहा, महाराज मैंने तो कुछ नहीं सुना, आप तो बोले ही नहीं। महात्मा जी ने कहा, कई प्रश्नों के उत्तर बोल के नहीं लेकिन करके दिखाए जाते हैं। तो मैंने बता तो दिया, दिखा तो दिया। राजा ने कहा, महाराज मैं कुछ नहीं समझा। महात्मा जी ने कहा, देखो मेरे हाथ में कितनी लकड़ियां, मैं इन सारी लकड़ियों को एकता में, एकजुट, एक गठे में कैसे बांध पाया? एक पतले तार से मैंने सबको एकता में बांध दिया, लेकिन लेकिन बांधने वाले तार में लचीलापन चाहिए। अगर ये तार अकड़ा हुआ होता, लकड़ियों को बांधता, ये इतना लचीला है, जैसे मैंने इसको लपेटा ये लिपट गया। तो राजन, अपने भीतर लचीलापन लाओ, अपनी अकड़ खत्म करो, झुकना सीखो, मोल्ड होना सीखो। बाबा भी कहते हैं ना, जो मोल्ड होता है वो रियल गोल्ड है। तो जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसे लोग, उसके अनुसार जो अपने आप को मोल्ड कर ले, लचीला बन जाए, तो वो कितनों को भी साथ लेके चलेगा। और जो अपनी जिद पे अकड़ रहे, अकड़ा रहे, तो वो कैसे साथ लेके चलेगा। दूसरी विशेषता, ये तो पहली विशेषता थी नम्रता और गुण दर्शन। दूसरी विशेषता, हर एक इम्पोर्टेंट है, हर कोई महत्वपूर्ण है। जैसे एक बहुत बड़ी मशीनरी होती है ना, उस मशीनरी की एक छोटी सी कील है, एक छोटा सा कांटा है, अगर वो निकल जाए तो मशीन रुक जाती है। कहते हैं कि एक बार एक राजा युद्ध के मैदान में गया, जिस घोड़े पर वो सवार था, उस घोड़े के पांव में, घोड़े के पांव में एक नाल होती है, वो नाल ठीक से नहीं लगी थी, जिसके कारण घोड़ा मैदान में ठीक से नहीं चल पाया, उसके कारण राजा मैदान में ठीक से युद्ध नहीं कर पाया, और उसके कारण राजा युद्ध हार गया। तो एक छोटी सी घोड़े की नाल के कारण एक राजा युद्ध हार गया। अर्थात छोटे से छोटा पुर्जा भी महत्वपूर्ण है। बाबा कहते हैं, बाबा की माला में जितने भी मणके हैं, उनमें से लास्ट मणके से भी बाबा को बहुत 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 प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि मेरा बाबा तो कहता है ना, बाबा ने कहा, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिमान ना बाबा को पहचान सके, ना खुद को पहचान सके, लेकिन मेरी माला के उस लास्ट मणके ने खुद को भी पहचाना और बाबा को भी पहचाना। तो ये उसकी कितनी बड़ी विशेषता है। तो ये विशेषता बाबा के हर बच्चे में है। इस विशेषता के कारण वो बाबा का बच्चा बना। तो हर कोई महत्वपूर्ण है, हर कोई विशेष है। अगली बात, हर कोई जिम्मेदार है। कोई ये ना सोचे कि बड़े लोग ही जिम्मेवार है, कोई ये ना सोचे कि इस यज्ञ में जिनके पद हैं या जो पुराने हैं, यज्ञ की संभाल की जिम्मेवारी उनके ऊपर है? नहीं, यज्ञ की संभाल की जिम्मेवारी हम सबके ऊपर, हम सब इस यज्ञ के रक्षक है, एक एक जिम्मेवार है। एक माला बेचने वाला माला बेच रहा था, तो किसी ने कहा अच्छा अपनी माला तो दिखाओ। उसने माला निकाल के दिखाई और देखने वाला जब ऐसे ऐसे करके माला देखने लगा तो एक मोती के ऊपर से चमक उतरी हुई थी, केवल एक मोती के ऊपर से, बाकी उसमें जो और बहुत सारे मोती थे सारे चमक रहे थे। तो उसने कहा भाई मैं तो ये माला नहीं लूंगा। बोला क्यों? बोला देखो ये जो मोती है ना ये बिना चमक का है। तो कहा देखो बाकी सारी मोती तो चमक रही हैं। बोला बाकियों की चमक भी इस एक के कारण फीकी पड़ गई, अर्थात एक मोती ने पूरी माला की चमक को कम कर दिया। कहने को तो एक ही है ना, लेकिन एक की फीकी चमक पूरी माला की चमक को कम कर देती है। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे भी इस ब्राह्मण परिवार की माला के मोती हैं, मणके हैं। अगर किसी एक की भी चमक कम होगी तो क्या होगा? पूरी माला की चमक कम हो जाएगी। लोग नाम तो यही लेंगे ना कि देखो ब्रह्मा कुमारी वाला, ये ब्रह्मा कुमारी वाला है, तो नाम किसका आया? पूरी संस्था का नाम आ गया। इसलिए मैं ये ना सोचूं कि जिम्मेवारी बड़ों की है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा यज्ञ है, मुझे अपनी चमक को मेंटेन रखना है, चाहे मैं कहीं भी हूं हर घड़ी मेरी चमक बरकरार रहे, कोई भी देखने वाला देखे तो मैं चमकता मणका दिखाई दूं। अगला गुण है देने की भावना, त्याग। आसमान में आपने बादल देखे ना, जब बादल पानी से भर जाता है तो वो काला हो जाता है, और जब बरस जाता है तो बरसने के बाद सफेद हो जाता है। तो जो केवल लेना ही लेना चाहता है, इकट्ठा ही इकट्ठा करना चाहता है, वो काला हो जाता है, और जो बांट देता है वो सफेद हो जाता है। अब लोग किसके साथ रहना चाहेंगे, काले वाले के साथ कि सफेद वाले के साथ? मुझे याद है मैं एक ऐसे परिवार में गई जहां 30 लोग एक ही चूल्हे पे खाना खाते थे। बड़ी हैरानी हुई आज के जमाने में 30 लोग। तो मैंने पूछा भाई मुझे इसका राज बताइए, आप सब कैसे इतना प्यार से रहते हैं? उस परिवार में एक भाई ब्रह्मा कुमार है, वही लेके गया था अपने परिवार वालों से मिलाने के लिए। तो जो घर की सबसे बुजुर्ग महिला थी उसको मैंने पूछा, तो पुरानी बात से उसने शुरुआत की कि जब भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो मेरे 6 बच्चे, 5 लड़के और 1 लड़की, बहुत छोटे छोटे थे, और जो बच्चों का पिताजी था वो बापू गांधी के आश्रम में सेवा करता था, स्वराज आश्रम में, उसकी कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी। तो मैं इन 6 बच्चों को क्या खिलाऊं? तो मैं पड़ोसियों के यहां से छाछ लेके आती थी और उसमें थोड़ा बेसन घोला और कढ़ी बन गई। मेरा बड़ा बेटा आता था, मेरा बड़ा बच्चा, मतलब समझो छोटे छोटे बच्चे काम में लग गए, कहीं कहीं थोड़ा बहुत काम करते थे। तो बड़ा बच्चा आया, मैं पूछता था माँ खाना बन गया? हाँ बेटा कढ़ी बनी है। तो कहता था मैं उसको कटोरी में डाल के कढ़ी देती थी तो कहता था बस दो चम्मच कढ़ी ना चपाती के ऊपर रख दे। मेरे को ज्यादा कढ़ी अच्छी नहीं लगती, मेरे छोटे भाई को कढ़ी बहुत पसंद है, ये उसको खिला देना। तो वो सिर्फ जैसे घी लगाते हैं ना रोटी पे, ऐसे कढ़ी लगा के दो चम्मच कढ़ी से चला जाता था खा के। फिर दूसरा बेटा आता था, मैं उसको कढ़ी की कटोरी भर के देती थी, कहता था माँ इतनी कढ़ी, इतनी मैं नहीं खाऊंगा, आधी कर दे, थोड़ी सी कढ़ी में वो खाना खा के चला जा। तीसरा आता था, उसको मैं देती थी, वो भी ऐसे ही करता था। मेरे छह के छह बच्चे खाना खा लेते थे और कढ़ी का पतीला भरा का भरा रह जाता था। फिर कभी अगर मैं पीहर जाती थी तो मेरा भाई कहता था बहन बच्चों के लिए शर्ट का कपड़ा ले जा। मैं कपड़ा ले आई, बड़े बेटे को कहा बेटा शर्ट सिलवा ले, कहता था माँ मेरी तो ठीक ठाक पड़ी है शर्ट, छोटे भाई को पहना दे उसकी फट गई है। मैं दूसरे वाले को कहती थी बेटा शर्ट सिलवा ले, कहता था माँ मेरी तो ठीक है, वो छोटे वाला ना स्कूल में जाता है, अब बड़ी क्लास में हो गया, उसको सुंदर कपड़े चाहिए, उसकी सिलवा देना। मैं तीसरे को कहती थी शर्ट सिलवा ले, वो चौथे का नाम ले देता था। मेरा वो कपड़ा पड़ा का पड़ा रह जाता था, कोई बच्चा शर्ट पहनने को तैयार नहीं होता था। एक शर्ट में इतनी बरकत, पांचों को कह लिया फिर भी बच गई। फिर बच्चे बड़े हो गए, बड़े हो गए तो इनकी शादियां हो गई, पांच भावें घर में आ गई, लेकिन इन पांचों में ऐसी यूनिटी कि वो पांचों भी एक हो गई, उनकी बात कोई नहीं मानता। ये पांचों आपस में जो फाइनल कर लेते हैं वही होता है। फिर उनके दो दो बच्चे हो गए, अब घर में बढ़ने लगी संख्या, लेकिन वही यूनिटी। तो उनमें जो दूसरे नंबर की बहू थी उसकी आंख में कुछ खराबी आ गई, बहुत जगह दिखाया पर बेचारी को धुंधला दिखता था, वो धुंधला दिखना भी धीरे धीरे बंद हो गया। तो मैंने उस बहू को पास में बिठाया, मैंने कहा बहन आज के जमाने में अंधे व्यक्ति को बड़े कष्ट, तो तेरे को दिखता नहीं, कष्ट तो बहुत होते होंगे। कहती नहीं मुझे कोई कष्ट नहीं है। मैंने कहा अच्छा, इनको देख के तो नहीं बोल रही है, सच बोल रही है? बोली बहन मैं सच बोल रही हूँ, हम पांचों के दस बच्चे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी अकेली के ही दस बच्चे हैं, मैं एक को बुलाती हूँ तो दसों दौड़ के आते हैं। और उसका युगल भी बाजू में बैठा था, उसने कहा बहन जी जब तक इसको दिखता था मैं अपनी दुकान से 8 बजे आता था, लेकिन जब से इसको दिखना बंद हुआ है मैं दुकान से 5 बजे आ जाता हूँ, इसलिए कि इसको कोई भी जरूरत पड़े तो ये मेरे से सेवा ले ले। और फिर कहने लगा कि देखो आज से 20 साल पहले ये हमारे घर में आई थी, तो 20 साल इसने हमारे घर में सेवा की, गवर्नमेंट भी 20 साल के बाद पेंशन दे देती है, तो अब ये पेंशन की अधिकारी है, बैठ करके खाए, इसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम सब घर संभालेंगे। तो मेरे को वो मनुस्मृति की बात याद आई, यत्र पूजन्ते नारियस्तु रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की कदर है उस घर में एकता भी रहेगी, स्मृति भी रहेगी, शांति भी रहेगी। तो देखिए घर के इतने मेंबर, कुछ नौकर चाकर, पहले गरीबी थी लेकिन बाद में उसी परिवार का एक लड़का मिनिस्टर बन गया। अब मिनिस्टर बनने के बाद तो गरीबी रहती नहीं, तो आज वो घर धन धान्य से भरपूर है, लेकिन प्यार उतना ही है, यूनिटी उतनी ही है, सब कुछ धन दौलत होते हुए भी गुण भी मौजूद है। ऐसा संयोग बहुत कम होता है, धन आता है तो गुण चले जाते हैं, गुण होते हैं तो धन चला जाता है, लेकिन ये दोनों संयोग है, इसलिए उस घर में इतने मेंबर एक ही चूल्हे पे खाना खाते हैं। और हम सब कितने एक चूल्हे पे खाना खाते हैं, बाहर हम सुनाते हैं ना लोगों को कि हम 20,000 25,000 30,000 लोग एक ही डाइनिंग में खाना खाते हैं, एक ही किचन में हम सबका खाना बनता है। और कितना स्वादिष्ट बनता है, ये उसी त्याग का फल है, प्यार का फल है और बाबा की दुआओं का फल है। ओम शांति।
सतयुग में अब तुम्हें आना।